झलक ने जल्दी से कहा। उसने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ और सिर्फ आकांक्षा से शादी करना चाहता है। उसे लगता है कि मैं उसके लिए ऑब्सेस्ड हूँ और शायद इसीलिए वो मुझे जलाने के लिए, मुझे उकसाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। अब ये सुनकर आरव जी, साथ साथ स्नेहा, सौरभ और दादाजी, इन सब ने एक दूसरे की ओर देखा और जैसे ही उनकी नज़रें मिली, कुछ ही सेकंड के अंदर सभी के सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। वहीं सबको हंसता हुआ देखकर झलक के माथे पर बल पड़ गए। क्या हुआ, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? तभी सौरभ जी हंसते हुए बोले, सच में यार, मैं तो सिद्धार्थ खुराना को बड़ा स्मार्ट और समझदार समझता था, लेकिन वो तो एक नंबर का उल्लू निकला। सही नाम रखा है हमारी अनु ने, उल्लू। ये सुनकर दादाजी भी हंसते हुए बोले, उसे लगता है कि हमारी झलक मल्होत्रा, द ग्रेट झलक मल्होत्रा, उसके लिए पागल है, उसके लिए ऑब्सेस्ड है। इससे बड़ा बेवकूफ और पागल इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। सबको इस तरह हंसते हुए देखकर झलक के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। सौरभ जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि तुमने अपने प्लान के अकॉर्डिंग कैसे ये सब किया है। अब जैसे ही सौरभ जी ने ये कहा, अनामिका ने भी तुरंत सवाल किया। तभी झलक अपने पिता के पास गई और उन्हें गले लगाकर बोली, वैसे मानना पड़ेगा पापा, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन आपने मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरे चेहरे को देखकर ही समझ लिया कि मैं क्या चाहती हूँ। ये सुनकर सौरभ जी मुस्कुराए। उन्होंने उसके माथे को चूमते हुए कहा, आखिरकार मेरी रानी बेटी कब क्या सोच सकती है, मुझे क्यों नहीं पता होगा? बचपन से लेकर आज तक तेरे दिमाग में क्या चलता है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वहीं अनामिका हैरानी से बोली, इसका मतलब? मतलब क्या है इसका? झलक, क्या तुम चाहती हो कि सिद्धार्थ आकांक्षा से शादी के लिए हाँ करते? क्या ये भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा है? ये सुनकर झलक ने केवल शांत चेहरे से अनामिका की ओर देखा। वहीं आरव जी थोड़े से उदास हो गए थे। कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात उठने लगी थी कि वो अपनी बेटी को उतना अच्छी तरह से नहीं समझ पाते जितना सौरभ जी समझ लेते हैं। उधर अनामिका ने फिर से पूछा, तुम चुप क्यों हो? इसमें तुम्हारी कौन सी चाल है? और वैसे भी हमारा मकसद सिद्धार्थ और आकांक्षा को हराने का है, उन्हें नीचे दिखाने का है और उनकी गलती का एहसास करवाने का है, लेकिन इस बीच तुम उनकी शादी क्यों करवाना चाहती हो? इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? और जबकि सिद्धार्थ तुम्हारा हस्बैंड है, क्या तुम ये बात भूल गई हो? तुम अपने ही पति की शादी अपनी सबसे बड़ी दुश्मन आकांक्षा से करवाना चाहती हो, ये बात मुझे कुछ अजीब लग रही है। अब ये सुनकर झलक ने गहरी सांस ली और बोली, सिद्धार्थ खुराना को लगता है कि मैं उसके लिए ऑब्सेस्ड हूँ, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अगर कोई सच में ऑब्सेस्ड है तो वो आकांक्षा ओबेरॉय है, मैं नहीं। और वैसे भी सिद्धार्थ और आकांक्षा की शादी होनी ही चाहिए, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। झलक थोड़ी देर रुकी, फिर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि शादी के बाद मुझे क्या करना है। शादी के बाद मैं सिद्धार्थ के उस घमंड को, उसके गुरूर को पूरी तरह से तोड़कर रख दूंगी। झलक की बातों में एक अजीब सा रहस्य था। दादाजी उसे बस गर्व भरी नजरों से देख रहे थे। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वैसे भी हमें यहाँ रहना काफी पसंद आ रहा है बेटा, तुम्हें जितना टाइम लेना है लो, आराम से धीरे धीरे अपने दुश्मनों को ऐसा बना दो कि वे सोच भी ना पाए कि उनके पास कोई रास्ता बचा है। दादाजी की ये बात सुनकर झलक हल्के से मुस्कुरा दी। तभी अचानक वहां किसी की आवाज आई, क्या आपके दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए हम लोग आपकी कोई मदद कर सकते हैं? जैसे ही ये आवाज आई, सब हैरानी से पलटकर देखने लगे। वहां कबीर, अभय और साथ ही आदित्य राणा खड़े थे। उन्हें देखकर अनामिका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो तुरंत आगे बढ़ी और आदित्य को गले लगाकर उसका स्वागत किया, साथ ही अभय को भी हल्का सा हग किया। लेकिन कबीर ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उसने बस हेलो कह दिया। ये देखकर कबीर थोड़ा सा चिढ़ गया और मन ही मन बोला, मुझ में क्या कांटे लगे हैं क्या? आदित्य भाई को तो गले लगाकर वेलकम किया और मुझे बस हेलो, पता नहीं खुद को क्या समझती है। तभी अनामिका उसके थोड़ा पास आई और धीरे से उसके कान में बोली, मैं प्रिंसेस हूँ यहाँ की, समझे? मैं प्रिंसेस समझती हूँ अपने आप को। अनामिका ने बेहद आराम से कहा और वो मुस्कुरा दी। अब कबीर उसकी बात सुनकर हैरानी से बोला, यार ये लड़की कितनी ज्यादा खतरनाक है, ये तो मेरे मन की बात भी पढ़ लेती है। वो खुद ही सोचकर हैरान हो रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। फिर आगे बढ़कर सभी लोग पूरे परिवार से मिलने लगे थे। वहीं आदित्य की तरफ से झलक की नजर जैसे ही पड़ी, उसके चेहरे पर भी एक सुकून भरी मुस्कुराहट उभर आई। वो हल्का सा शर्माकर आगे बढ़ी और उसने आदित्य का स्वागत किया। तभी सभी लोगों के बीच अनामिका अचानक से एक्साइटेड होकर बोली थी, अच्छा हुआ आदित्य जीजू, आप यहाँ आ गए। जैसे ही अनामिका ने आदित्य को जीजू कहकर पुकारा, आदित्य के गाल पूरी तरह से शर्म से लाल हो गए थे। वहीं झलक गुस्से से अनामिका को देखने लगी थी और आंखें दिखाकर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हें क्या जरूरत है इस तरह से खुल्लम खुल्ला ऐसी बातें करने की, अभी आदित्य और उसकी शादी नहीं हुई है, तो थोड़ा सा उसे अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन अनामिका तो अनामिका थी। उसने तुरंत झलक की ओर देखकर उसे आंख मार दी, मानो कहना चाह रहे हो अब तुम मुझे शरारत करने से नहीं रोक सकती। फिलहाल तभी स्नेहा जी तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी और फटाफट से, जिस तरह एक दामाद की खातिरदारी की जाती है उसी तरह आदित्य के लिए तरह तरह के पकवान बनवाने में लग गई थी। उसकी खातिरदारी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि सुबह सुबह ही झलक हॉस्पिटल से होकर आई थी इसलिए उसने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया था। फिर सभी ने हंसी खुशी के साथ मिलकर नाश्ता किया। इस दौरान आदित्य की नजरें पूरी तरह से झलक पर ही टिकी हुई थीं। उसने अभी तक झलक से एक शब्द भी नहीं कहा था, जबकि बाकी सबसे उसने हल्की फुल्की बातचीत कर ली थी। थोड़ी देर बाद कबीर बोला था, जी हम लोग भी अब कुछ दिनों के लिए मुंबई में ही रुकेंगे, क्योंकि हमारा जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है उस पर अभी हमें यहीं से काम करना होगा, इसलिए हम लोग यहीं पास में किसी होटल में रुक जाएंगे ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ये सुनकर दादाजी ने हैरानी से कबीर को देखा और बोले, ये क्या बातें कर रहे हो बेटा, इतना बड़ा महल जैसा घर हमने इसी दिन के लिए बनाया है, इसमें इतने सारे कमरे हैं कि कम से कम 10-10 परिवार एक साथ रह सकते हैं। आप लोगों को कहीं होटल में रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग यहीं रुकेंगे, समझे आप लोग। इतना कहकर उन्होंने नौकरों को आवाज लगाई और फटाफट उन लोगों का सारा सामान अलग अलग कमरों में शिफ्ट करवा दिया। जानबूझकर यहां अनामिका ने चालाकी दिखाई, उसने अपना कमरा जो झलक के ठीक सामने था खाली कर दिया और खुद दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई, क्योंकि वो चाहती थी कि आदित्य और झलक को साथ में ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी टाइम मिले। उसे पूरा यकीन था कि अगर इन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ना है तो उन्हें एक दूसरे के करीब आना ही होगा। अनामिका समझ चुकी थी कि झलक के दिल में अभी भी सिद्धार्थ खुराना को लेकर कुछ अधूरे जज्बात बाकी हैं। आखिरकार झलक ने उसके साथ काफी वक्त बिताया था, अच्छे बुरे हर पल में वो उसके साथ रही थी, इसलिए इतनी जल्दी उसके दिल से सिद्धार्थ के लिए सारी फीलिंग्स खत्म होना आसान नहीं था, उसे वक्त लगेगा। और अनामिका ये भी जानती थी कि अगर झलक की जिंदगी में फिर से शांति और खुशियां लानी है तो आदित्य को उसके करीब रहना ही होगा। वहीं जैसे ही झलक को पता चला कि अनामिका ने वो कमरा खाली करके आदित्य के लिए कर दिया है तो वो माथे पर बल डालकर अनामिका को कोने में ले गई और बोली, क्या कर रही हो तुम, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, देखो अनामिका अभी मैंने सिर्फ इस रिश्ते के लिए हाँ कहा है।
तभी अनामिका फटाक से बोली, मैं जानती हूँ कि तुमने सिद्धार्थ खुराना को चिढ़ाने के लिए हाँ कहा है, पूरे दिल से अभी तक तुमने आदित्य को एक्सेप्ट नहीं किया है। जैसे ही अनामिका ने ये कहा, झलक के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए थे। वो धीरे से बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी कम दिनों में तुम मुझे इतनी आसानी से कैसे समझने लगी हो। तभी अनामिका ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, देखो मैं जानती हूँ कि तुम किन चीज़ों से गुजर रही हो, लेकिन तुम्हें अब खुद को मूव ऑन करना होगा। तुम कोई कमज़ोर लड़की नहीं हो यार कि हर वक्त बैठकर रोती रहो। दोस्तों मैं जानती हूँ आप लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे कि रोज़ आपको एपिसोड नहीं मिल पा रहे हैं, सच में माफ़ी चाहूँगी दोस्तों। एक्चुअल मेरी आस्था अरमान वाली स्टोरी का पॉकेट पर आरजे शो बन रहा है, इसलिए मुझे उसके एपिसोड एडिट करने पड़ रहे हैं, मैं उन्हीं में बिज़ी हूँ। जैसे वो काम ख़त्म होगा मैं डेली एपिसोड का ट्राई करूँगी। ओ होप आप सब सपोर्ट करेंगे।